लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। उन लोगों के समान मत बनो जो दूसरों की जमानत देते और कर्जदारों की जिम्मेदारी लेते हैं। कहीं ऐसा न हो कि चुकाने का रुपया तुम्हारे पास न हो और तुम्हारा बिस्तर भी तुमसे छीन लिया जाए। खेत का वह सीमा पत्थर मत हटाओ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खड़ा किया है। क्या तुम किसी को अपने काम में निपुण देखते हो तो समझ लो कि वह साधारण लोगों की नहीं बल्कि राजाओं की सेवा करेगा। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 22वें अध्याय के अंतिम चार पद। विगत सप्ताह हमने इन्हीं पदों की व्याख्या से पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक जीवन उपयोगी चेतावनियां देता है। कहता है, उन लोगों के समान मत बनो जो दूसरों की जमानत देते और कर्जदारों की जिम्मेदारी लेते हैं। कहीं ऐसा न हो कि चुकाने का रुपया तुम्हारे पास न हो और तुम्हारा बिस्तर भी तुमसे छीन लिया जाए। मित्रों की मदद करना सच्ची मैत्री का सिद्धांत है। जहां तक हो सके हम ऐसा करें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना बुद्धिमानी होगी कि हम किसी खतरे में न पड़ें। मित्र के चुनाव में बुद्धिमानी और सावधानी जरूरी है। हमें सभी के प्रति सभ्य होना चाहिए, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने कृत्यों के प्रति सावधान न रहें। लेखक कहता है कि हम न तो दूसरों की जमानत लें और न ही कर्जदारों की जिम्मेदारी लें। कहीं ऐसा न हो कि हमारे पास ही चुकाने का रुपया न हो और हमसे वह सब छीन लिया जाए जो हमारे लिए जरूरी है। यहाँ कहीं ऐसा न हो कि चुकाने का रुपया तुम्हारे पास न हो और तुम्हारा बिस्तर भी तुमसे छीन लिया जाए से तात्पर्य यही कि हमारी संपत्ति का अंतिम हिस्सा भी हमसे छीन लिया जा सकता है यदि हमने कर्ज चुकाने का वादा पूरा नहीं किया। श्रोताओं को हमने याद दिलाया था कि बाइबल धर्म ग्रंथ में कई ऐसे वृत्तांत मिलते हैं जिनमें यह बात साधारण सी थी कि यदि किसी के पास भुगतान करने के साधन नहीं थे तो उसके लेनदार उसका बिस्तर तक उससे ले सकते थे, यानी कि उसका सब कुछ ले सकते थे। फिर सूक्ति ग्रंथ के 22वें अध्याय के अंतिम दो पदों में लेखक हमें अपनी संपत्ति और परिवारों को बर्बाद नहीं करने के प्रति सावधान करता है। कहता है, खेत का वह सीमा पत्थर मत हटाओ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खड़ा किया है। क्या तुम किसी को अपने काम में निपुण देखते हो तो समझ लो कि वह साधारण लोगों की नहीं बल्कि राजाओं की सेवा करेगा। यहाँ इस बात के प्रति ध्यान आकर्षित कराया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने और अपने परिवार के लोगों, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ उनके पास है वह सब उनका नहीं है बल्कि उसमें परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी है। अस्तु जो व्यक्ति अपने उतावलेपन के कारण या अपनी मूर्खता के कारण या फिर कुप्रबंधन से या दूसरों के ऋण के बोझ से दबकर अपनी संपत्ति बर्बाद कर देते हैं, वे खुद को और अपने साथ अपने परिजनों को भी गरीबी में घसीट लेते हैं। जबकि अच्छा प्रबंधन और सूझबूझ के साथ अपनी संपत्ति का रखरखाव प्रत्येक का दायित्व होना चाहिए। याद रखें, जो कुछ हमारे पास है वह सब प्रभु ईश्वर की देन है। उसे संभालना और विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करना प्रत्येक की जिम्मेदारी है।
हे ईश्वर, तेरी दया स्वर्ग तक छाई। हे ईश्वर, तेरी दया स्वर्ग तक छाई।
और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 23वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। 35 पदों वाला यह लंबा अध्याय इस चेतावनी के साथ शुरू होता है। शक्ति, प्रतिष्ठा और संपत्ति की उपस्थिति में एक उचित पद छोड़ने का दबाव मजबूत हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को शासक द्वारा दी जाने वाली किसी भी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे स्थिति की सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही उसे धोखा खाने से बचा पाएगा। वस्तुतः श्रोताओं, बाइबल धर्म ग्रंथ की इन सूक्तियों का अभिप्राय है क्या? इनका अभिप्राय यही है कि इन सूक्तियों को ग्रहण कर हम खुद अन्यों के मार्गदर्शक बन सकते हैं। इनका उपयोग हम ज्ञान प्रदान करने, सलाह देने, नैतिकता का पाठ सिखाने या व्यक्ति को उसके विश्वास में सुदृढ़ करने, तर्कणा देने, पारस्परिक तनाव दूर करने, समझने में सहायता करने या फिर दूसरों को सांत्वना देने या प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा की एक लोकप्रिय कहावत यह भी है कि अभ्यास परिपूर्ण बनाता है जबकि ज्ञान परमानंद है। तो आइए इस पृष्ठभूमि के साथ सूक्ति ग्रंथ के 23वें अध्याय के प्रथम पदों पर गौर करें। इसके प्रथम तीन पद इस प्रकार हैं। यदि तुम किसी शासक के यहाँ भोजन करते हो तो ध्यान रखो कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है। यदि पेटुपन की लत हो तो अपने पर संयम रखो। उसके स्वादिष्ट व्यंजनों का लालच मत करो, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। यहाँ विचार शक्तिशाली लोगों के साथ स्वादिष्ट अच्छी तरह से तैयार भोजन से भरी मेज पर खाने के लिए एक उदार निमंत्रण का है। यह वैसी स्थिति है जिसका सामना दानियल और उनके साथियों को करना पड़ा था। दानियल के ग्रंथ के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि दुष्ट राजा नबूकदनेस्सर ने दानियल और उनके साथियों को स्वादिष्ट भोजन का निमंत्रण दिया था, किंतु दानियल ने निश्चय किया कि वह राजकीय भोजन और अंगूरी खा पीकर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा। श्रोताओ, अमीर अथवा कथित बड़े लोग यूं ही आपको भोजन के लिए कभी आमंत्रित नहीं करेंगे। अमीर अपना उपकार मुफ्त में नहीं देते हैं, वे बदले में कुछ चाहते हैं और आम तौर पर यह उनके निवेश से कहीं अधिक होता है। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ का लेखक सचेत करता है, ध्यान रखो कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है, अर्थात सत्ता और विलासिता के माहौल से अभिभूत बहकावे में न आए। यदि पेटूपन की लत हो तो अपने पर संयम रखो का अर्थ है, यदि आप इन प्रलोभनों के प्रति संवेदनशील हैं तो सावधान रहें। अपनी भूख को रोकने में ही हमारा हित है, यानी खुद को नियंत्रित करना। सूक्ति ग्रंथ के लेखक का कहना यही है कि वह व्यक्ति जो बुद्धि के मार्ग पर चलने की इच्छा रखता है, जो ईश नियमों के प्रति सत्यनिष्ठ होता है, वह ईश्वर के प्रेम से अपनी आंखों को रोशन रखे, क्योंकि ईश्वर उसके समक्ष सारी सुख सुविधाओं को रख देंगे। वह धोखे के भोजन से दूर रहे जो कि उसकी आध्यात्मिक उत्कृष्टता को भी छीन लेता है। आगे 23वें अध्याय के 4 से लेकर 7 तक के पदों में भी लेखक सचेत करता है, कहता है, धनी बनने के लिए परिश्रम मत करो, यह विचार मन से निकाल दो। तुम धन पर आंख लगाते हो तो वह लुप्त हो जाता है, क्योंकि उसके पंख निकल जाते हैं, वह गरुड़ की तरह आकाश की ओर उड़ जाता है। कंजूस के यहां भोजन मत करो, उसके स्वादिष्ट व्यंजनों का लालच मत करो, क्योंकि वह वैसा ही है जैसा मन में सोच रहा है। वह तो तुमसे कहता है खा पी लीजिए, किंतु उसका हृदय तुम्हारे साथ नहीं है। श्रोताओ, कई बार सूक्ति ग्रंथ में आलसी आदमी की निंदा की गई है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति धन के लालच में अधिकाधिक परिश्रम करे। हालांकि कड़ी मेहनत करना निश्चित रूप से बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, तथापि हम हर हालत में धन प्राप्ति के लिए नहीं जिएं, क्योंकि धन हमारे जीवन को बहुत कमजोर और अस्थायी बना देता है। धन का लालच हमें विनाश की ओर ले जाएगा, क्योंकि यह एक न एक दिन गायब हो जाता है। हमारे पास जो रहेगा वह है हमारा सच और सच पर आधारित हमारे सिद्धांत।
हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई, हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई, है तेरी निष्ठा मेघों पर लहराई, स्वर्ग तक छाई। पावन गिरिसा न्याय अटल है तेरा, पावन गिरिसा न्याय अटल है तेरा, गहरे सागर सा निर्णय है तेरा, गहरे सागर सा निर्णय है तेरा, प्रभु मनुज और पशुओं का है त्राता, हे ईश्वर।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। ईश्वर शांति है और शांति की चाह रखते हैं। जो लोग उनमें विश्वास करते उन्हें युद्ध का बहिष्कार करना चाहिए जो सिर्फ तनाव बढ़ाता है। युद्ध हमेशा और केवल एक पराजय है। यह एक ऐसा रास्ता है जो कहीं नहीं लेता, ना कोई क्षितिज खोलता बल्कि सारी उम्मीदें समाप्त कर देता है। उक्त बात संत पापा ने बृहस्पतिवार को एक्स के माध्यम से कही और विश्व में चल रहे युद्धों को रोकने का आह्वान किया। पोप फ्रांसिस ने कार्मेल की एकांत मठवासी धर्म बहनों को आनंद और प्रेम से भरने के लिए पूरी तरह प्रभु की उपस्थिति से सराबोर होने हेतु आमंत्रित किया है। पोप फ्रांसिस ने गुरुवार को वैटिकन में डिस्काल्स्ड कार्मेलाइट धर्म बहनों के सुपीरियर्स और प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए कहा कि चिंतन का मार्ग स्वाभाविक रूप से प्रेम का मार्ग है, जो हमें उस प्रेम का गवाह बनाता है जो हमें मिला है। संत पापा ने कहा, एकांत मठवासी जीवन एक सीढ़ी के रूप में सेवा देना है जो हमें ईश्वर तक ले जाती है। यह किसी को दुनिया से अलग करना नहीं बल्कि इसमें और अधिक गहराई से स्थापित करना है। यह स्वीकार करते हुए कि धर्म बहने अपने संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया में हैं, पोप ने स्वीकार किया कि यह एक महत्वपूर्ण दायित्व है। उन्होंने कहा, यह न केवल प्राकृतिक मानवीय आवश्यकता और सामुदायिक जीवन की आकस्मिकताओं का जवाब देना है बल्कि प्रार्थना और आत्मपरक के लिए खुद को समर्पित करने का अवसर है। उन्होंने आगे कहा, पौत्रात्मा के कार्य के लिए आंतरिक रूप से खुले रहकर आपको चिंतनशील जीवन को अधिक गति देने के लिए नई भाषा, नए तरीके और नए साधनों की खोज करने की चुनौती दी गई है जिसे अपनाने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। पोप ने कहा कि वे कार्मेल के करिश्मे को ईश्वर की महिमा और कलीसिया की भलाई के लिए कई दिलों को आकर्षित करने में सक्षम बनाते हैं। पोप ने कार्मेल की धर्म बहनों के इतिहास और अतीत को समृद्धि का स्रोत कहा और उन्हें आत्मा की प्रेरणाओं, सुसमाचार के चिरस्थायी नवीनता और प्रभु के संकेतों के लिए खुला रहने का प्रोत्साहन दिया जिसको वे हमें जीवन के अनुभवों और इतिहास की चुनौतियों के माध्यम से दिखलाते हैं। एकांत मठवासी धर्म बहनों के रूप में पोप ने स्वीकार किया कि वे दुनिया से अलग होने और इसमें रहने के बीच एक निश्चित तनाव में रहती हैं। यह स्पष्ट करते हुए कि उनकी वास्तविकता आंतरिक आध्यात्मिक सांत्वना या प्रार्थना में शरण लेने से दूर है, वास्तविकता से अलग है। बल्कि पोप ने आश्चर्य व्यक्त किया कि कार्मेलाइट धर्म बहने ख्रिस्त के प्रेम से जुड़ी रहती हैं ताकि उनका प्रेम पूरे अस्तित्व में व्याप्त हो सके और वे जो कुछ कहते और करते हैं उसमें अभिव्यक्त हो। संत पापा ने कहा, मसीह के प्रेम में डूबे रहें और उनके साथ एक हो जाएं, ताकि उनका प्रेम आपके संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त हो जाए और जो कुछ भी आप कहते और करते हैं उसमें अभिव्यक्त हो। पोप ने कहा कि उन्हें अपने संविधान को संशोधित करने और मठों और सामुदायिक जीवन की कई ठोस समस्याओं को संबोधित करने के लिए जिस प्रकाश की आवश्यकता है वह सुसमाचार द्वारा दी गई आशा के अलावा और कुछ नहीं है। संत पापा ने कहा कि इसमें खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित होना शामिल है, संकेतों को पढ़ने सीखना है जो हमें भविष्य को समझने में मदद करते हैं। अंत में पोप फ्रांसिस ने बहनों को ईश्वर में आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पोप फ्रांसिस ने संत पियूस 10वें पर फादर लूचो बोनोरा की एक नई किताब की प्रस्तावना लिखी है, जिसमें उन्होंने 20वीं सदी के आरंभ के पोप की धर्म शिक्षा की गहराई और प्रथम विश्व युद्ध पर उनके विरोध की प्रशंसा की है। पियूस 10वें एक ऐसे पोप थे जिन्होंने पूरी कलीसिया को यह समझाया कि पौत्र यूखरिस्ट के बिना और प्रकट सत्य को आत्मसात किए बिना व्यक्तिगत विश्वास कमजोर हो जाता है और अंधता मर जाता है। पोप फ्रांसिस ने अपने पूर्वाधिकारी पोप पियूस 10वें की प्रशंसा करते हुए एक नई किताब पियूस 10वें को श्रद्धांजलि समकालीन चित्र की प्रस्तावना लिखी है। किताब इताली शहर त्रेविजो, जो पोप पियूस 10वें का जन्मस्थान है, के पुरोहित और वैटिकन राज्य सचिवालय के एक अधिकारी फादर लूचो बोनोरा ने लिखी है। बुधवार को जारी अपनी प्रस्तावना में पोप फ्रांसिस ने कहा कि वे दिवंगत पोप का बहुत सम्मान करते हैं और याद करते हैं कि वे हर साल 21 अगस्त को उनके पर्व पर बॉयनस एरिस महाधर्म प्रांत के प्रचारकों से मिलते थे। उन्होंने कहा, मुझे बच्चों और वयस्कों को विश्वास की सच्चाइयों की शिक्षा देने के लिए समर्पित लोगों के साथ समय बिताने में आनंद आता है और संत पियूस 10वें को हमेशा प्रचारकों के पोप के रूप में जाना जाता है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि पियूस 10वें एक सौम्य लेकिन मजबूत, विनम्र और स्पष्ट पोप थे। उन्होंने बतलाया कि पियूस 10वें ने रोम में येसु समाजियों द्वारा संचालित परमधम पीठे बाइबल इंस्टीट्यूट के निर्माण को मंजूरी दी थी, जिसने उन्हें येसु समाजियों के बीच प्रिय बना दिया। स्वर्गीय पोप प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर रो पड़े थे और शक्तिशाली लोगों से अपने हथियार डालने का अनुरोध किया था। पोप फ्रांसिस ने पियूस 10वें की याद करते हुए कहा, आधुनिक दुनिया के इस दुखद क्षण में मैं उनके अत्यंत करीब महसूस करता हूँ। उन्होंने अक्सर छोटे बच्चों, गरीबों, जरूरतमंदों, भूकंप पीड़ितों, वंचितों और प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की थी। पियूस 10वें एक ऐसे पोप थे जिन्होंने प्रेरितिक देखभाल को यादगार बनाया। संत पापा ने फादर बोनोरा को संत पियूस 10वें के जीवन पर वर्षों के शोध के लिए धन्यवाद दिया है और कहा है कि उनका समर्पण और उत्साह दस्तावेज में दिखाई पड़ता है। न्यूयॉर्क में 16 अप्रैल को आदिवासी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र को संबोधित वक्तव्य में परमधम पीठ की ओर से संयुक्त राष्ट्र के स्थायी पर्यवेक्षक ने आदिवासियों, विशेषकर युवाओं का समर्थन करने और उनके साथ संवाद विकसित करने के महत्व पर बात की। संयुक्त राष्ट्र में परमधम पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्म अध्यक्ष कच्चा ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में जनजातियों के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र में बात की। बैठक का मुख्य विषय था आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के संदर्भ में आदिवासी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को बढ़ाना, आदिवासी युवाओं की आवाज पर जोर देना। मंगलवार को अपने बयान में महाधर्म अध्यक्ष ने कहा कि परमधम पीठ ने आदिवासी मुद्दों पर स्थायी मंच के काम को स्वीकार किया है। उन्होंने बतलाया कि पोप फ्रांसिस ने अधिक न्यायपूर्ण एवं मानवीय दुनिया बनाने के लिए आदिवासी युवाओं को बहिष्कार, बर्बादी और दरिद्रता से लड़कर अपनी संस्कृतियों और जड़ों को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।